ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 12 श्लोक नंबर 16। पश्य माम निर्जितम शत्रु उरिक्ल आयुध भुजं मृधे घटमानं यथाशक्ति तव प्राण जिहिर्षया। पश्य माम निर्जितं शत्रु वृक्लायुधभुजं मृधे घटमानं यथाशक्ति तौ प्राण जिहिर्षया। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद एक बार आप लोग सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही परास्त हो चुका हूं, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुकी है। तुमने मुझे पहले से जीत रखा है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूं। अब तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध प्रारंभ करो। कृपा करके इस दिव्य वाणी को मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही परास्त हो चुका हूं, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुकी है। तुमने मुझे पहले से जीत रखा है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूं। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध प्रारंभ करो। प्रेम रूपम प्राण रूपम जीवनम भूषणम परम भक्ता नाम श्री कृष्ण नाम कृपया में प्रसिद्ध। तो हरे कृष्ण। जैसे प्रतिदिन हम लोग इस प्रसंग को सुनते आ रहे हैं, कथा वहां पहुंची है। अब वृत्रासुर जी की दोनों भुजाएं कट चुकी है और उनके क्रोध बढ़ाने के लिए वृत्रासुर उनके नजदीक जाते हैं। इसे एक दो श्लोक आगे में आएगा कि दोनों हाथ कटी हुई है वृत्रासुर जी के, और गुस्से में इंद्र के पास जाते हैं और पास जाकर के इंद्र को सीधे निगल जाते हैं। निगलने के बाद देवता असुर सिद्ध चारण गंधर्व ये सब इस स्थिति को देख करके वृत्रासुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और उसी श्लोक के निचले लाइन में अपने भाव प्रकट कर रहे हैं इंद्र के प्रति कि हाय हाय, अब क्या होगा, इंद्र को तो वृत्रासुर निगल गए, लेकिन ऐसी ऋषि विद्या को हासिल किए थे इंद्र जी कि पेट में जाने के बाद ही, वृत्रासुर के पेट में जाने के बाद भी वृत्रासुर के कोख को फाड़ करके और वो फिर निकल आते हैं। हम लोग इससे पिछले वाले श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि जिस वैष्णवी विद्या को हासिल करके भक्त किसी भी परिस्थिति से अपने को उबार सकता है, क्योंकि इस प्रसंग में यही कथा चल रही है कि अगर पूर्ण रूपेण जो आश्रित है भगवान के ऊपर, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे इंद्र हो या ब्रह्मा जी हो या कोई शक्तिशाली इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दो तीन श्लोकों में, आज के श्लोक से दो तीन श्लोक पीछे के श्लोकों में यह बताया गया है कि जब मनुष्य के जीवन में समय अनुकूल और प्रतिकूल होता है तो उसकी बिगड़ी हुई जीवन सुधर जाती है, या प्रतिकूल अवस्था आने पर उसकी सुधरी हुई जीवन बिगड़ जाती है। एक तरफ अनुकूल परिस्थिति भी बिगड़ जाती है अगर समय ठीक नहीं होता है तो, और प्रतिकूल अवस्था में तो बिगड़ी ही हुई है। लेकिन बताया गया है कि अगर काल की स्थिति ऐसी है, क्योंकि काल का साक्षात स्वरूप अगर देखा जाए तो भगवान ही है। वृत्रासुर जी के एक स्तुति में आया था कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां स्त्री और विजय और लक्ष्मी ये तीनों वास करते हैं, और भगवान स्वयं काल स्वरूप है। अगर वो चाहें तो प्रतिकूल अवस्था में भी किसी के जीवन को सुधार सकते हैं, अगर वो चाहें तो अनुकूल परिस्थिति में भी किसी के जीवन को वो बिगाड़ सकते हैं। वो परम स्वतंत्र है। इंद्र को बहुत ही सुंदर उपदेश वृत्रासुर जी दे रहे हैं कि इंद्र, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम इतने अथक प्रयास कर रहे हो, मेरे को मारने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान पहले से ही तुम्हारे लिए व्यवस्था कर चुके हैं, और वही किसी जीव को मारते हैं या वही किसी जीव को रखते हैं। इसलिए हे इंद्र, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, जो कुछ भी परिस्थिति देखी जाती है उसके पीछे एकमात्र काल अर्थात भगवान का ही हाथ होता है। अगर इस जगत के संपूर्ण सृष्टि में से केवल भगवान को अगर निकाल दिया जाए तो बचता ही क्या है? कोई भी वस्तु न देखने लायक, न सुनने लायक, न काम करने लायक रहेगी। हर वस्तु में उनकी ही शक्ति की संचार है जिसके कारण जीव जीवित रूप में कार्य करने की शक्ति को प्राप्त किया है। अगर वो अपनी शक्ति को हटा लें तो भागवत में बार बार आया है कि जीते हुए भी मुर्दे के समान जीव है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे मुर्दा हिलता नहीं है मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, वैसे ही जीव अगर भगवान को छोड़ देता है या भगवान उसके ऊपर कृपा करना छोड़ देते हैं तो कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं है। लेकिन इन सारी स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए कल के श्लोक में आया था कि जब तीन गुणों के प्रभाव के संसर्ग में जीव आता है तो उसकी स्थिति उथल पुथल हो जाती है। क्योंकि अगर जीव जिस प्रकार की भावना में उत्प्रोत होकर के कार्य करता है, सतो गुण में भी रह करके जीव इस संसार में रह सकता है, रजोगुण और तमोगुण में रहने वाले जीवों की तो स्थिति बंधी ही है, लेकिन जब तक शुद्ध सतोगुण की स्थिति में जीव नहीं आता तब तक अपने को इस संसार से सारी बिगड़ी हुई जो स्थितियां हैं उससे अपने को छुड़ा नहीं सकता। इसलिए अपनी संगति को बनाए रखने के लिए, अपने भाव को बनाए रखने के लिए हमें वैसे वातावरण को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए वैसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, अर्थात जिसकी कृपा से जगत चल रहा है उस काल को अनुकूल बनाए रखने के लिए कुछ प्रार्थना करनी पड़ती है। क्योंकि इससे पिछले वाले श्लोक में आया है, कल जीतामृत प्रभु बहुत सुंदर ढंग से समझाए कि आत्मा को इन तीनों गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही जीव अपना कुछ गुण निहित कर देता है, अर्थात उसके अंदर अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, तो बद्धते बंध जाता है, नहीं सर्वोपरि स्थिति भगवान को जानने का प्रयास करता है तो श्लोक में आता है कि स न बद्धते, वह इस संसार में नहीं बंध पाता। तीनों गुणों की स्थिति को अपने जीवन में अगर हम उतार रहे हैं, फिर भी अगर भगवत चरणानुरागी मन को कृष्ण से बांधे रहने का प्रयास करते हैं तो ये तीनों गुण भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि एक शुद्ध या विशुद्ध सत्व में स्थित भक्तों की हृदय की भावना भागवत में बहुत जगह वर्णन है कि उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या और कोई भी विपरीत परिस्थिति है वो भी उस भक्त को कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि वह बंधने लायक कार्य ही नहीं करता। हम लोग तब बंधते हैं जब भगवान के चरणों से दूर रहते हुए अपने वर्चस्व दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं कर रहा हूं। एक श्लोक में वृत्रासुर जी इंद्र को कह रहे हैं कि हे इंद्र, तुम्हारा जो ये प्रयास है और तुम सोचते हो कि मैं मार दूंगा, तो यह मारना या किसी को रखना या किसी को ऊपर कृपा करना या किसी के कृपा को छीन लेना, ये पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर करता है। उनका कहने का आशय यह था कि हे इंद्र, तुम क्या मुझको मार सकते हो, भगवान ने मुझे मारने के लिए व्यवस्था किया है, सारी स्थिति उन्होंने पैदा किया है कि मैं कैसे मर सकता हूं, फिर भी मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी मैं लड़ने लायक नहीं रहा। आपने 100 गांठों वाले वज्र से मेरे एक एक भुजा को आपने काट डाला, पिछले के श्लोक में आया है कि एक भुजा कटी हुई थी, बाई भुजा, तो एक भुजा से ही वृत्रासुर ने प्रहार इतना जोर से प्रहार किए कि इंद्र का वज्र उनके हाथ से छूट गया और वो वज्र वृत्रासुर के पास ही गिरा। अगर चाहते वृत्रासुर तो उस वज्र को उठा करके प्रहार कर सकते थे, लेकिन वीर की योग्यता क्या होती है, योद्धा की योग्यता क्या होती है, उन्होंने वृत्रासुर जी ने निभाया। वहां उन्होंने कहा लज्जित मत हो, अपने आयुध को उठाओ और फिर से प्रहार करो। देखिए मरने की कितनी उत्कंठा है, क्योंकि वो अपनी मृत्यु को जानते थे कि मेरा एक एक घड़ी का जो समय यहां बीत रहा है वह असहनीय हो रहा है। वृत्रासुर जी के लिए कहते जल्दी मारो मुझे, इसीलिए तो इंद्र के क्रोध को बढ़ाने के लिए उन्होंने दोबारा एक ही हाथ से प्रहार किया। और प्रहार करने के बाद जैसे ही वज्र इंद्र का छूट गया हाथ से, तो इंद्र लज्जित सा हुए कि अब मैं क्या करूं। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी वृत्रासुर जी ने उनका सम्मान किया इंद्र का कि नहीं नहीं आप उठाओ और फिर से प्रयास करो। प्रयास उन्होंने उठाया तो फिर अपने 100 गांठ वाले, दो जगह यह शब्द आया है कि इंद्र ने अपने 100 गांठों वाले वज्र से इंद्र के दोनों भुजाओं को काटा। और आज के भी श्लोक में शक्र शब्द कहा आया है, नहीं इससे पिछले वाले श्लोक में है कि हे इंद्र तुम्हारा नाम ही है 100 यज्ञ करने वाला और तूने भगवान के द्वारा प्रदत्त दी हुई 100 गांठों वाले वज्र से तूने मेरा दोनों भुजाएं काट दिया, तो भी मैं जीने की आशा से तुमसे लड़ने का प्रयास कर रहा हूं। उस परिस्थिति में आप सोचिए कि जिनके पास दो भुजाएं न हो, दोनों भुजाएं से खून चल रहा है, उस परिस्थिति में भी इंद्र के नजदीक जाकर के वृत्रासुर जी निकल गए। अब स्थिति क्या है, लेकिन वृत्रासुर जी को इस स्थिति का पता था कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। जब मारने के लिए उन्होंने मनोनीत किया है कि मैं इंद्र के हाथ से मरूंगा, तो भी वो जल्दी मरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि मेरी जीने की जीव की जीने की स्थिति बता रहे हैं कि जीव जीने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करता, इस शरीर को रखने के लिए कौन सा प्रयास नहीं, कौन सा पाप नहीं करता, लेकिन अन्य जीवों के अपेक्षा वृत्रासुर जी की यह स्थिति नहीं थी। वो इस शरीर को जल्दी छोड़ना चाहते थे, इस श्लोक के अंदर उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया कि जीव जीने के लिए हर प्रयास करता और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और शरीर के मानने के कारण ही कि मैं शरीर हूं, इसी से जीव इस जगत में सड़ रहा है। अगर जिस दिन वह मान जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश आत्मा हूं, तब तो ऐसे ही स न बद्धते, वह ऐसे ही संसार में नहीं बंधेगा। लेकिन यह भाव अभी नहीं आया है। अगर जीव की स्थिति यह आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अपने आप छूटा हुआ है। लेकिन कृपा प्राप्ति के लिए, प्रार्थना और याचना करने के लिए इस शरीर की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य शरीर की सदुपयोगिता बताई हुई है कई जगह। किसकी फलश्रुति है? भक्ति करने में। हम लोग इतने भाग्यशाली जीव हनुमान जी की तरह और जामवंत जी की तरह नहीं है कि अन्य योनि में जाने के बाद भी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। मनुष्य शरीर केवल प्रार्थना करने के लिए मिला हुआ है। और इससे पिछले वाले श्लोक के भावार्थ में अगर जाएंगे तो जैसे कल जितामित्र प्रभु ने बताया था, रावण कुंभकर्ण और विभीषण का उन्होंने उदाहरण दिया था कि तीनों गुण के प्रभाव में कैसे कैसे आकर उन लोगों ने किस स्थिति को प्राप्त किया। वैसे ही भागवत के, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसी भागवत के छठे स्कंद के अंदर अजामिल की प्रसंग बीत चुकी है, जिसमें अजामिल के जीवन चरित्र में भी ये तीनों गुण आया था। शुरू में उन्होंने, वे सतगुण में थे, जुआ अवस्था में रजोगुण को प्राप्त किए और बुढ़ापे में पूर्ण रूपेण पुत्र स्नेह में तमोगुण की स्थिति में थे। एक ही जीव के ऊपर ये तीन गुण कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, ये उदाहरण है। अब इसको कितना हम लोग अपने जीवन में किस गुण के प्रभाव में रख सकते हैं, यह भगवान के ऊपर, साधुओं के ऊपर और गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि इन तीनों गुण से यही तीन व्यक्ति पूर्ण रूपेण छुड़ाने में समर्थ हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। जितने भी किसी के भी कितने भी अगर संबंधी हों तो किसी को बांध सकते हैं, छुड़ा नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु का संबंध, साधु का संबंध और भगवान का संबंध जीव से केवल छुड़ाने के लिए है, इस संसार से छुड़ाने के लिए। और कोई संबंध हमें छुड़ा नहीं सकता है, फंसा सकता है। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद के अंदर उद्धव जी चौथे स्कंद के 11 स्कंद चौथा अध्याय और 46वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान से कि अगर जीव चार चीजों को अगर अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो आपको वो प्राप्त कर लेगा, वो इस जगत में फिर बंध नहीं पाएगा। कहते हैं कि त्वयोपभुक्त स्रगंध बासो अलंकार चर्चित उच्छिष्टो भोजिनो दासा तो माया जय मही। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि हे कृष्ण, त्वयो भुक्त, आपके द्वारा भोगा हुआ श्रगंध वासो अलंकार। कहते हैं कि आपके स्पर्श किया हुआ सुगंध युक्त माला और आपके शरीर पे चढ़ाया हुआ वस्त्र और आपके शरीर पर चढ़ाया हुआ आभूषण और आपको अर्पित किया हुआ भोजन अर्थात प्रसाद, त्वयोप भुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजनो दासा, ये चार चीज आपके दास बनने में समर्थ हैं, दास बनाने में समर्थ हैं। और वह जीव तव माया जये मही, वह जीव आपके द्वारा बनाई हुई माया को जये मही जीत लेता है। अब सोचिए कि भगवान के चरणों में लगी हुई माला या उनके चरणों में लगी हुई सुगंधित इतर हो, तुलसी हो, हमको उस चीज को किस भाव से लेना चाहिए। वह इतना समर्थ है कि हमको इस माया जगत से छुड़ा सकता है और भगवान की कृपा को दे सकता है, और हम लोग प्रसाद को किस रूप में लेते हैं? खाते समय हम लोगों को लगी रहती है जल्दी जल्दी गोदाम को भरो, कभी भगवान स्मरण आते हैं उस समय कि हम क्या खा रहे हैं? किस रूप में लें और कण कण पर कैसे हम भगवान का स्फुरण करें, क्या यह भाव आता है? इसीलिए आज तक हम लोगों के अंदर वो भाव विकसित नहीं हो पा रहा है। माला को लिए, फूल के लिए जहां तहां फेंक दिया। आप सोचिए उद्धव जी जो भगवान के समान थे, भगवान ने स्वयं उनको योग्यता दिया था, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशियों के वो मंत्री थे, उनके अंदर ये योग्यता थी, भगवान ने बहुत शक्ति दिया था उद्धव जी को। उद्धव जी इस बात को भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु कोई भी जीव इस माया जगत में तब तक बंधा हुआ है जब तक इनकी कृपा से वंचित है, अगर इनकी कृपा को अपने जीवन में उतार लेता है तो वह इस जगत में बंधा नहीं रहेगा। अब हम लोगों को भगवान की कृपा कैसे लेनी है, कितना तक हम लोग रख पाते हैं, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। गुरु आदेश देकर चले जाते हैं, गुरु शिष्य को दीक्षा देकर के चले जाते हैं, लेकिन उनका वाक्य जो है साक्षात गुरु है और उस वाक्य के निर्देशन में शिष्य को चलना होता है, तब शिष्य अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर बना रहेगा। इस प्रसंग में इतने शुद्ध भक्त होने के बाद भी वृत्रासुर उनके उद्गार को देखिए, आगे चल करके स्वयं इंद्र कहेंगे वृत्रासुर जी के लिए, चार पांच श्लोक उन्होंने कहा है कि हे इंद्र, अरे हे वृत्रासुर जी, हे असुर शिरोमणि, हे असुर वर, असुर वर शब्द इंद्र यूज किए हैं कि आप असुर वंश में तो उत्पन्न हुए, लेकिन जितनी शुद्धता और भगवान के प्रति जितनी एक निष्ठता आपके अंदर है उतनी मुझ में भी नहीं है। इंद्र खुद ग्लानि महसूस कर रहा है, क्योंकि जितने आत्मसमर्पण की भावना या हृदय की भाव जितनी गहरी वृत्रासुर जी की है, इंद्र अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे अंदर वास्तव में कोई शक्ति नहीं है, ये भगवान की बनाई ही विधि के द्वारा हम आपको मार रहे हैं, लेकिन आप मरे नहीं हैं। जिस भाव में आप अपने हृदय की भाव और गहराई को भगवान के चरणों में अर्पित कर चुके हैं वह भाव मेरे अंदर नहीं है। भक्त अपना तो कभी भरोसा ही नहीं रखता, भक्त को केवल अपना है तो भगवान, और जिसने भगवान को अपना बना लिया उसको किस बात की कमी रह जाएगी कि वो किस बात के लिए रोएगा इस जगत में। जहां से सारी वस्तुओं की उत्स होती है, शुरुआत होती है, जिसके केंद्र भगवान है, और उस केंद्र बिंदु को उसने प्राप्त कर लिया तो किस चीज की कमी रहेगी कि वो रोएगा दूसरे के पास। रोना हम लोगों को इस बात के लिए चाहिए कि हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ करने में समर्थ नहीं है। हे प्रभु, जब आप कृपा करोगे, अगर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो हम आपके चरणों में लगे रहेंगे। यह जो अध्याय चल रहा है, प्रार्थना के बाद वृत्रासुर जी के हृदय की भाव क्या है, उस भाव को इस अध्याय के अंदर वर्णन किया जा रहा है कि असमर्थ है वृत्रासुर जी, कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी यह भाव है कि सब भगवान कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी दुख हम लोगों के शरीर के ऊपर होता है तो सारी साधना भूल जाते हैं। विचार करें, हम लोग उस दृश्य को देखने का प्रयास करें कि जिनकी दोनों भुजाएं कटी हुई हैं, शरीर से रक्ताधार हो रहा है, उस स्थिति में अगर वो वृत्रासुर जी शरीर के धरातल पर होते तो कराहते होते, लेकिन शरीर की स्थिति से उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया था, जिसके चलते उन्हें कुछ भी दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि वे सशरीर भगवान के चरणों में लिप्त थे। वो उस दृश्य को देख रहे थे कि हमारा मन, हमारा शरीर भगवान के चरणों में जाएगा, उनकी कृपा को हम प्राप्त करेंगे, हम उनके पास रहेंगे। जूद में है लेकिन जूद से हट करके उनकी भावनाएं हैं। हम लोग इस संसार में हैं, सारी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति को प्राप्त करने को, भगवान को प्राप्त करने का अगर हम लोग प्रयास करें और एक निष्ठता होएगी तो हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन हिल डोल रहे हैं हम लोग। कभी यस कभी नो, हाँ भगवान की कृपा है। जब थोड़ी सी प्रतिकूल अवस्था, प्रतिकूल समय आया, अरे पता नहीं भगवान का हमने क्या बिगाड़ा। आप सोचिए, अगर भगवान किसी का अगर बिगाड़ दे तो कौन बना सकता है उसको? है कोई बनाने वाला? और भगवान आज तक कोई भी उदाहरण अगर आप लोग दीजिए कि भगवान ने किसी का बिगाड़ा हो, शायद मुझे तो पता नहीं है, अगर आप लोगों को यह उदाहरण अगर पता हो कि नहीं भगवान ने किसी का बिगाड़ा हो, किसी की बुराई किया हो, तो उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। भगवान किसी का भी आज तक ने उन्होंने बिगाड़ा ही नहीं, किसी की भगवान ने आज तक बुराई की ही नहीं। अगर उनके अंदर ये सब भाव आ जाए तो जीव की क्या स्थिति होगी? इसलिए भगवान भगवान है, और जीव डूबते रहता है, तैरते रहता है, इसलिए कि जो गुण के प्रभाव है, जो गुण के संग है, जो गुण की संगति उसने किया है, उस भाव को प्राप्त करके उठते रहता है, रोते रहता है, हंसते रहता है, गिरते रहता है। जिस दिन विशुद्ध गुण को प्राप्त करेगा, शुद्ध विशुद्ध सत्व गुण को प्राप्त करेगा, उस दिन इस जगत से उस जीव को कुछ लेना देना नहीं रहेगा। यह स्थिति तब आएगी जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रसंग में कि पहले ही वृत्रासुर जी प्रार्थना कर चुके हैं, और प्रार्थना कर केवल जिह्वा से उन्होंने ही नहीं किया, जिह्वा से प्रार्थना करने के बाद उस भाव को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है। इसलिए युद्ध भूमि में होते हुए भी उस स्थिति को देख रहे हैं कि मुझे इस शरीर को छोड़ने के बाद और छोड़ने से पहले भी मैं वही हूं, भगवान के चरणों में हूं, उस दृश्य को देख रहे हैं। हम लोग मरे या जी हैं, चाहे जिस स्थिति में इस संसार में हैं, अगर एक लक्ष्य बना लें कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के ही हैं, कृष्ण हमारे हैं, केवल एक लाइन इस चीज को अपने जीवन में हम बनाए रखें, तो हम लोग इस संसार से उठे हुए हैं। काल के ऊपर सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि समय कितना बलवान होता है, उस पद को मैं एक बार बरसाना गया था तो रमेश बाबा के मुखारविंद से सुना था कि वह पद इस प्रकार का है कि जब राधा रानी को भगवान छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं तो भगवान के विरह में राधा जी के वाक्य हैं, उस समय की प्रबलता का वर्णन कर रहे हैं कि समय कितना बलवान होता है। अपने सखियों से कह रही हैं कि समय हो तो बलवान सखी रे, समय हो तो बलवान रे, एक दिन न मोहि हरि ही मनावत, हौ कर बैठी मान रे। ए सखियों, समय बलवान है। एक दिन वह समय था कि मेरे हरि मुझको मनाते थे, मैं अगर मान कर जाती थी, हट कर जाती थी, तो मेरे प्रियतम मुझे मनाते थे। लेकिन समय की विपरीत स्थिति देखो कि वह समय मेरे ऊपर आ चुका है। समझ हो तो बलवान सखी रे, समझ हो तो बलवान रे, एक दिन न मोही, एक दिन न हम ही हरि ही मनावत, हौ कर बैठी मान रे। समय वह था कि मैं जब मान कर जाती थी तो स्वयं प्रीतम मुझे मनाते थे, लेकिन समय बलवान हो गया है कि आज वही हरि मुझको छोड़कर के चले गए हैं, और जब मैं विनती कर रही हूं, मैं मना रही हूं, तो कान्हन करत नहीं कान्हरे, कि कान्हा से मैं प्रार्थना कर रही हूं कि मान जाओ हे मेरे प्रियतम आ जाओ, लेकिन कान करत नहीं कान्हरे, मेरी प्रार्थना को कान्हा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा समय बलवान होता है। आज मनावत प्राण जात थे, कान करत नहीं कान रे, एक दिनन हरि मोहे बिन पलखे, रही सके रही न सके घर आन रे। कि समय इतना बलवान है कि मुझे इस प्रार्थना के का जो प्रभाव है मेरे हरि के ऊपर नहीं पड़ रहा है। मुझे भगवान, मुझे मेरे प्रियतम इस बात को स्वीकार करके मेरे पास नहीं आ रहे हैं। एक दिन समय वह था कि एक दिना हरि मोहे बिन पलखे, रही न सके घर आए रे। एक दिन वह समय था कि मेरे हरि, मेरे प्रियतम मुझको एक बार बिना देखे अपने घर वापस नहीं लौटते थे, लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रही हूं, जो मुझे बिना देखे रह ही नहीं सके थे, लेकिन आज वो मेरे प्रार्थना के बावजूद भी वो मेरे इस प्रार्थना को नहीं सुन रहे, मेरे बात को नहीं मान रहे। समय हो तो बलवान सखी रे, समय हो तो बलवान रे। आप सोचिए किस भाव में बिलख करके और किस स्थिति को प्राप्त करके श्रीमती राधा रानी इस भाव को बोल रहे हैं कि वही कान्हा बिना देखे घर नहीं आते थे, चाह करके भी नहीं जाते थे, लेकिन आज वो नहीं मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, मेरा समय ठीक नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंध पढ़ेंगे तो रासपंचाध्यायी में कई ऐसे श्लोक आए हैं कि हर जीव अपने अपने को कोस रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करने लायक नहीं हूं, शायद मुझसे यह अपराध हो गया, भगवान ने मुझे अपना नहीं बनाया, क्योंकि समय ठीक नहीं है, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई हो, अन्य भक्तों की अन्य अभिलाषाएं हैं। आज विकल हम पल पल तलपत तजन कुब्जा ध्यान रे। उद्धव अरे सूरदास जी लिखते हैं और राधा रानी का भाव यह है कि मैं इतने विकलता की भावना में, मैं इतनी कातर भाव से प्रार्थना कर रही हूं, इतनी मैं तलप रही हूं, लेकिन मुझको छोड़कर के कृष्ण का प्रेम कहां टिका हुआ है, तो कुबजा तजत न ध्यान रे। आज मुझको छोड़कर के कृष्ण कुबजा से प्रेम कर रहे हैं, क्या समय हो गया, कहां मुझसे प्रेम करते थे, आज मुझको छोड़ करके वो अपने ध्यान से कुब्जा को नहीं हटा रहे हैं। इतनी ऊंची भाव है, भगवान की अनुपस्थिति में एक भक्त का या एक प्रेमी भक्त का भाव क्या होता है, उसके हृदय की स्थिति क्या होती है, हम आंकड़ा लगा सकते हैं। मेरे महाराज तो कहा करते हैं कि सूरदास जी जो सूर सरावली में इतने पद लिखे हैं, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो एक एक श्लोक का उन्होंने अनुवाद किया है अपने भाव में। सूरदास जी इतने ऊंच कोटि के भक्त थे कि भगवान के लीलाओं का ही उन्होंने अपने पद में वर्णन किया है। हम लोग इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करें, अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना अपने मन में गुनगुनाते रहेंगे, अपने आचार्यों के बातों को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये भाव हमारे कभी जाएंगे नहीं। लेकिन ये भाव हमारे हृदय से उतने तेजी से इसलिए निकल जाते हैं कि कभी भी गुरु महाराज के वाक्यों को, प्रभुपाद के वाक्यों को और भगवान ने अपने भक्तों के प्रति जो वाक्य कहा है उन वाक्यों पर ध्यान नहीं देते। तब हम गुण के प्रवाह में, गुण के प्रवाह रूपी तेज धारा में बह जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन वृत्रासुर जैसे शुद्ध भक्त, इंद्र की ये वाक्य है, इंद्र कहते हैं कि आप विशुद्ध भक्त हो, कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में आपकी एक निष्ठता है, तो इस प्रकार की एक निष्ठता लाने के लिए भक्त भागवत और भगवान और इन ग्रंथों में अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, तब हम इन भावों को अपने हृदय में रख पाएंगे, नहीं तो चाहने के बाद भी ये भाव उड़ जाएंगे। अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने जीवन में कुछ उसको उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये भाव नहीं बन पाएगा। इसलिए इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन हमें अनवरत कृष्ण को याद रखना है, कृष्ण की कृपा की अनुभूति करनी है। कृष्ण की अनुभूति करने के लिए ही इन ग्रंथों को सुनने और पढ़ने की जरूरत है कि कृष्ण क्या है, उस चीज को हम समझ पाएंगे इनको पढ़ने के बाद। हरे कृष्ण। कोई इस प्रसंग में प्रश्न है?
ऐसे समझे कि हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, हम कहां गलती करते हैं, ये क्या अपराध होता है कि हम लोग स्वीकार करते हैं, जैसे प्रसाद सुबह शाम लेते हैं, माला भी स्वीकार करते हैं और की वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन माया का प्रकोप को फिर भी रहता है, माया के प्रभाव में फिर भी रहते हैं, तो सो कैसे समझे हम क्या गलती करते हैं, तो इसमें बताइए।
किस भाव से उसको अपने पास स्वीकार करना है, डायरेक्ट कृष्ण में और कृष्ण के प्रदत्त दी हुई वस्तुओं में, अगर हम अंतर देखते हैं तभी उस चीज को आदर के भाव से हम नहीं स्वीकार करते। अगर आदर है और उसको भगवान जैसा आदर देने का प्रयास करेंगे तो वही वो दी हुई प्रदत्त वस्तु इतनी समर्थ है कि निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति को करा देगी। प्रयास हमें यही करना है। अगर कदाचित कभी अगर हमसे प्रसाद छूट जाता है या किसी प्रसादी माला के ऊपर अपना पैर पड़ जाता है या वस्त्र के ऊपर कभी भगवान के शरीर पे चढ़ाए हुए वस्त्र के ऊपर अगर पैर रख पड़ जाता है तो जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उन भगवान के द्वारा भोगी हुई वो जो वस्तु है वो सजीव हो चुकी है और भगवान की कृपा को प्राप्त हो चुकी है। जिस भाव से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उससे अगर भी क्षमा याचना करते हैं उस वस्तु से तो भगवान को भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। लेकिन हम लोग प्रसाद को ऐसे फेंकते हैं, माला को ऐसे फेंकते हैं, उनकी दी वस्तु में उतनी गाढ़ता के साथ उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे हम लोग आज वहीं के वहीं पड़े हैं। हम लोग आते हैं प्रार्थना रोज करते हैं ना कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वताम राजन विश्वासो नैव जायते। विश्वास नैव जायते, अगर विश्वास निश्चित रूप से अगर हो जाए कि प्रसाद हमारा उद्धार करेगा तो प्रसाद उद्धार कर सकता है। लेकिन विश्वास नहीं है इसलिए आज तक हम वही हैं। उद्धव जी उस भाव से कहे हैं उस श्लोक को कि जितना आदर भगवान को हम दे रहे हैं उन वस्तुओं को भी वैसे ही आदर देना है, क्योंकि भगवान के द्वारा डायरेक्ट आई हुई वस्तु है, उनको भगवान ने स्पर्श किया है, अपने शरीर से लगाया है, वो शक्तिशाली बन चुके हैं। प्रयास हमें यह करना है कि उन वस्तुओं के प्रति जो भगवान के चरणों में चढ़ चुका है उनके प्रति इस प्रकार की सस्ता भाव हम न लें। चरणावृत हम लोग जो रोज ग्रहण करते हैं, राधा कृष्ण पादोदकम प्रेमा भक्ति इदम बुदा भक्ति भरेण वय पीत्वा शीर्षा धारया में हम लोग जो चरणावृत पान करते हैं वो राधा कृष्ण का पादोदक है, स्नान कराया हुआ जल है। हम इसलिए उसको पीते हैं कि प्रेमा भक्ति इदम बुदा वो हमारे हृदय में प्रेमारूपी भक्ति प्रदान करें, भक्ति भरे नवय पीता और अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए हम उसका पान करते हैं और उसको हम सिर पर धारण करते हैं, सिर सा धारया में हम, इतनी आदर होनी चाहिए। अरे हम मरेंगे अकाल मृत्यु से या क्या करेंगे इसके लिए हम लोग चरणामृत पान नहीं करते। हम लोग इसलिए चरणामृत का पान करते हैं, ग्रहण करते हैं कि राधा जिनका ये प्रेम प्रदत्त यह उदक है, जल है, वो उनके चरणों में प्रीति प्रदान कर सके। हम उस भाव से उस चीज को ग्रहण करें। अगर ये भाव रहेगा तो कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता। लेकिन उस भाव को स्मरण करना है कि ये क्या चीज है, विचार करना है कि हम जो चरणामृत ले रहे हैं वो क्या है, हमारे थाली में जो प्रसाद आया है वो क्या है, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी आया है मेरे पास तो क्या है, विचार कर एक बार सोच करके बस मिला। कोई एक प्रभुपाद जी के कृपा पात्र शिष्य आए तो उनके प्रवचन में बैठा था, बता रहे थे कि अगर हम जल भी लेते हैं ग्लास का हाथ में तो पहले एक बार विचार करें कि ये पानी कौन बनाया, इसके अंदर स्वाद कौन बनाया, ये वस्तु आई कहां से। वैज्ञानिक लोग तो H2O करके नहीं जल बना सकते, भगवान के बनाया हुआ ये जल है और उनकी कृपा इस जल के अंदर है। एक बार स्मरण करें हम भगवान को, इस भाव से किसी भी वस्तु को अगर हम ग्रहण करते हैं जो ग्रहणीय है, कृपा मिल जाएगी भगवान को। और वो इस प्रकार की भाव तभी आ सकती है जब हम इन चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी महिमा को जानने का प्रयास करते हैं, तब ये भाव आएगा। भाव बनाने के लिए और भक्ति को बढ़ाने के लिए ही इन चीजों की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ऐसे भक्त हैं कि इतनी एक निष्ठता भगवान के नाम में है कि उनको किसी भी प्रकार की कथा सुनाने की और सुनने की या और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। इतनी नामयिक शरण हम ले चुके हैं, नाम का एकमात्र शरण ले चुके हैं और इतना विश्वास हो चुका है उनके अंदर कि कृष्ण के अलावा, कृष्ण नाम के अलावा किसी चीज को सुनने का भी प्रयास नहीं करते। इसलिए इन वस्तुओं को भी हम उसी भाव से लें कि ये प्रसाद है। प्र सा द तीन अक्षर है इसके अंदर। प्रकृष्ण रूपेण भगवान, मतलब प्रकृष्ण रूपेण का अर्थ है कि वही कृष्ण इस वस्तु में आ चुके हैं। साक्षात मतलब स्वयं श्री कृष्ण जिनको हमें दे रहे हैं पूर्ण रूपेण, साक्षात रूप से द मीन्स दर्शन दे रहे हैं। प्रसाद उस रूप में हमें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री राधिका रमण भगवान की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर हरि प्रेमानंद।